हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। 400। आदित्य का स्टडी रूम। सुनैना एकदम ब्लैंक फेस के साथ वहाँ पर बैठी है, क्योंकि आदित्य के साथ इस वक्त वहाँ पर रवि और उसका सीक्रेट असिस्टेंट नदीम भी है, और वो कुछ पेपर्स लेकर उन पर साइन करवाने के लिए वहाँ पर आया है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। और अब तक सुनैना अपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कर रही थी, जबकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने कब और कितना पढ़ा है। जो कुछ भी अभी उसने प्रिपरेशन की वो उसे बिल्कुल याद नहीं, तो वो यही सोच रही थी कि वो एग्ज़ाम कब देगी। लेकिन तभी आदित्य वहाँ पर आता है, उसे अपने साथ लेकर स्टडी रूम में आ जाता है। आदित्य ने सुनैना को स्टडी रूम में पड़े हुए बड़े से सिंगल कोच पर बिठाया और खुद साइड में रखे हुए उसे बड़े से कोच पर बैठ गया, जिसके सामने टेबल भी रखी हुई है और उसी टेबल पर काफ़ी सारे पेपर बिखरे हुए हैं। सुनैना ने एक नज़र चारों तरफ देखा। वो स्टडी रूम में पहले भी आ चुकी है, इतना तो उसे याद है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वहाँ पर वो सब उसे याद नहीं आ रहा। लेकिन वहाँ पर देखते हुए कुछ धुंधली सी यादें उसके दिमाग में जैसे तैर रही हैं उसकी आँखों के सामने। तभी नदीम आदित्य से कहा, सर आप कुछ एक्शन क्यों नहीं लेते? वो जो नई कंपनी अभी अभी शहर में पैर पसारने की कोशिश में लगी हुई है वो सीधा आपकी इंडस्ट्री को ही टारगेट कर रही है, और आपने आजकल ऑफिस आना भी इतना कम कर दिया है, उन सबको पता चलेगा तो सभी इस बात का फायदा उठाएंगे। नदीम की बात सुनकर सुनैना ने उसी तरह खालीपन के साथ उसकी तरफ देखा जैसे कि वो उसकी बात समझने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा नदीम को आज उसने पहली बार ही देखा है अपने हिसाब से, लेकिन इससे पहले वो उसे कई बार मिल चुकी है, लेकिन वो सब कुछ उसे याद नहीं है। हाँ, वो रवि को जरूर जानती है, क्योंकि वो शादी वाले दिन से ही उसे आदित्य के साथ दिखता रहता है। नदीम की बात पर थोड़ा सोचते हुए आदित्य ने एक गहरी सांस ली और फिर सोफे का टेक लगाकर बैठते हुए अपनी आँख बंद करके बोला, नदीम तुम सब कुछ तो अच्छी तरह से जानते हो और फिर भी ये बात बोल रहे हो, चलो अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो बताओ पहले, बाकी रहने दो। ओके सर, अभी फ़िलहाल इन पेपर्स पर साइन करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सारे पेपर के बंडल्स में से उसने एक पेपर निकालकर आदित्य के सामने केबल पर रखते हुए कहा, और उसकी बात सुनकर आदित्य इधर उधर पेन ढूंढने लगा, तो रवि ने अपने हाथ में पड़ा हुआ पेन उसे दे दिया और आदित्य उसे पेन पर साइन करने ही वाला था कि तभी नदीम बोला, सॉरी सर, लेकिन आपके नहीं मैम के सिग्नेचर चाहिए हमें इन पेपर्स पर, क्योंकि अब तो कंपनी की ओनर वही है और पावर ऑफ अटॉर्नी भी उनके पास है और आप सिर्फ कंपनी के CEO हैं। बीच में बोलते हुए नदीम ने उसे याद दिलाया, तो आदित्य एक हाथ अपने सिर पर रखते हुए बोला, ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया था इस बारे में, लगता है सुनैना वाली बीमारी मुझे भी हो रही है। इतना बोलकर आदित्य ने सार्कास्टिकली हंसते हुए सुनैना की तरफ देखा, तो सुनैना ने गुस्से में उसे घूर कर देखा और बोली, मेमोरी लॉस की बीमारी है मुझे, कोई कोरोना वायरस नहीं हुआ जो मेरे छूने से तुम्हें भी हो जाएगा, और मुझे कौन से पेपर पर साइन करने के लिए बोल रहा है और ये है कौन? सुनैना को ऐसे गुस्से में देखकर आदित्य ने नदीम की तरफ हल्के से इशारा किया और बोला, असिस्टेंट है मेरा, काम करता है मेरे लिए, और क्या साइन? वो साइन तुम्हें पेपर पर करना है, वो जहां पर ऑनर के साइन होते हैं वहां पर। ये बात बोलते हुए आदित्य उससे नजरें नहीं मिला रहा और थोड़ा सा इधर उधर देख रहा है, तो सुनैना ने बहुत ही शक भरी निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या क्या कहा तुमने? मैंने सही सुना ना, मैं सच में ऑनर की जगह पर साइन करूं? दिमाग ठीक है तुम्हारा? मैं किसी भी चीज की ऑनर नहीं हूं, तो फिर क्या है ये सब? सुनैना ने उस काउच से उठकर खड़े होते हुए कहा, तो आदित्य भी अपनी जगह से उठकर आगे आया और उसके दोनों कंधे अपने हाथों से पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, ये सब कुछ, पूरी सिंघानिया इंडस्ट्रीज, सब कुछ तुम्हारे नाम पर है सुनैना, सिंघानिया के नाम पर, और ये सब कुछ हो चुका है, तुम्हें याद नहीं, लेकिन इससे सच तो नहीं बदलने वाला ना, इसलिए यहाँ पर साइन कर दो, ये थोड़े से इम्पोर्टेंट है, बाकी तुम्हें मैं बाद में समझा दूंगा। आदित्य की ये बात सुनकर सुनैना ने काफ़ी कंफ्यूज होते हुए उसकी तरफ देखा और वो अभी भी साइन करने के लिए आगे नहीं बढ़ी। नदीम ने पहले उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन सुनैना एक बार उसकी तरफ देखा और फिर वो आदित्य की तरफ ही देखने लगी, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तभी आदित्य ने आगे आकर सुनैना के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, जस्ट ट्रस्ट मी एंड साइन इट। सुनैना ने आदित्य की आंखों में देखा, जहां पर उसे जरा सी भी धोखा या दगाबाजी नजर नहीं आ रही थी, तो उसने पता नहीं क्या सोचकर बिना पढ़े ही उन पेपर्स पर साइन कर दिया। उसने सोचा कि जब वो उसे ओनर बोल रहा है तो अब क्या ही पेपर पढ़े, वो उसके पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो कोई ये आदित्य अपने नाम कर लेगा। बस ये सोचते हुए ही उसने पेपर पर साइन किया और फिर थैंक यू बोलकर नदीम वहां से निकल गया। तो उसके जाने के बाद आदित्य ने रवि को भी वहां से बाहर जाने का इशारा किया, तो रवि भी मुस्कुराते हुए वहां से बाहर निकल आया, क्योंकि अब कमरे में आदित्य और सुनैना ही अकेले बचे हुए थे। उन दोनों के बाहर से निकलने के बाद आदित्य सुनैना के सामने आया और उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बिठाया और खुद उसके सामने टेबल पर बैठता हुआ बोला, देखो तुम्हें भले ही याद नहीं है लेकिन मेरी पर्सनालिटी कुछ तो याद होगा ना, मुझे पब्लिक अपीयरेंस और लोगों के बीच जाना आना पसंद नहीं है, बस इसीलिए मैंने सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया था ताकि ये सब कुछ तुम अटेंड करो मेरे बिहाफ पर, लेकिन तब हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा, तो अब काम में काफी प्रॉब्लम आ रही है। आदित्य की ऐसी बातें सुनकर सुनैना बिना पलके झुकाए उसकी तरफ ही देख रही है और ये सब कुछ समझने की कोशिश कर रही है। उसने आदित्य से अपना हाथ नहीं छुड़ाया क्योंकि आदित्य का टच हमेशा ही उसे बहुत अच्छा फील करवाता है। आदित्य की बात सुनकर समझते हुए सुनैना ने सिर्फ इतना कहा, अपना सब कुछ तुम मेरे नाम कैसे कर सकते हो। आदित्य ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरा तो दिल, मेरी लाइफ, मेरी बॉडी, मेरा दिमाग, सब कुछ तो पहले ही तुम्हारे नाम है, तो फिर ये प्रॉपर्टी और पैसे कौन सी बड़ी बात है, वैसे भी मेरे लिए ये सब इतना मायने नहीं रखता। उसकी ये बातें सुनकर सुनैना ने सिर्फ इतना कहा, जिसके पास पैसे होते हैं ना उसके लिए कभी भी मायने नहीं रखते, लेकिन जिसके पास ना हो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। और क्या सच में मैं कंपनी की मालिक हूँ, मतलब मैं जो चाहे कर सकती हूँ, चाहे जितने भी पैसे खर्च कर सकती हूँ, सच में, और तुमने खुद ही ये किया है, लेकिन क्यों? आदित्य ने बात का टॉपिक चेंज कर दिया, तुम्हारे इन सारे क्या और क्यों का जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ, इसलिए बार बार ये सब नहीं करना मुझे, चलो तुम पढ़ाई करो जाकर, और कुछ समझना आए तो बताना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। उसकी बात सुनकर सुनैना ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया और वहां से अपनी किताबों की तरफ ही बढ़ गई। दूसरी तरफ अक्षत और रागिनी के अफेयर और रागिनी के प्रेग्नेंट होने की खबर मीडिया और पूरी इंडस्ट्री में एकदम जंगल में लगी आग की तरह फैल गई और अक्षत के फैंस के साथ साथ हेटर्स को भी इस बारे में पता चल गया और वो सब मिलकर इस बात का पूरा फायदा उठा रहे हैं और पूरी तरह से अक्षत के खिलाफ जा रहे हैं। इसके अलावा उसकी दो दिन बाद रिलीज होने वाली फिल्म के भी खिलाफ बोल रहे हैं और उसके खिलाफ काफी बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है।
अक्षत ने तो पिछले दो दिनों से टीवी ही ऑन नहीं की है क्योंकि उसे पता है कि इस बारे में ही ज्यादा न्यूज आ रही होगी और वो ये सब कुछ देखकर और भी बुरा नेगेटिव फील नहीं करना चाहता, लेकिन तभी उसे इस बारे में इन्फॉर्म करते हुए कहा, सर हमें जल्दी ही इस मामले को निपटाना होगा, नहीं तो सारा असर आपकी आने वाली मूवी पर पड़ेगा और उसके लिए भी बहुत प्रेशर है हम पर, क्योंकि काफ़ी बड़े प्रोडक्शन हाउस की फ़िल्म है और स्टोरी कॉन्सेप्ट सब पर उन लोगों ने काफ़ी मेहनत की है और इसीलिए आपको कास्ट किया था, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि उनकी ये स्टोरी फ्लॉप हो। अक्षत ने अपने हीरो वाले एटीट्यूड में हंसते हुए कहा, देखो मूवी बड़े प्रोडक्शन हाउस की हो या फिर छोटी, लेकिन मैं जिसमें भी काम करता हूँ वो मूवी कभी भी फ्लॉप नहीं होती और इसीलिए सब मुझे अपनी फ़िल्म में कास्ट करते हैं। अजय ने उसकी बात पर अग्री करते हुए कहा, जो सर मुझे इस बारे में बहुत अच्छे से पता है क्योंकि आपकी सारी डेट्स मैं ही हैंडल करता हूँ और अगले दो साल के लिए आपकी एक भी डेट्स खाली नहीं है, सबकी सब पूरी बुक है, आपके पास लगातार 6 फिल्में और 8 ब्रांड एंडोर्समेंट है, इसके अलावा एक इंटरनेशनल ब्रांड के साथ भी हमें कोलैब करना है अगले महीने में, लेकिन ये सब, अक्षत ने थोड़ा कन्फ्यूजन से पूछा, पता है मुझे भी ये सब, तो मुझे मेरा ही शेड्यूल क्यों रिमाइंड करवा रहे हो, क्या मैं इनमें से कुछ भूल गया हूँ? अजय जल्दी से अपनी बात पूरी तरह से एक्सप्लेन करते हुए बोला, अरे नहीं सर, मैं बस आपको अभी की सिचुएशन और हालात के बारे में बताना चाहता हूँ क्योंकि ये सब कुछ 3 दिन पहले की बात थी और अभी आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ फैल रही है और इसकी वजह से सीधा असर आपकी रिलीज़ होने वाली मूवी पर भी पड़ेगा, तो इसके लिए आपको अपनी सफाई में कुछ तो बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसी बातों को तो आप जानते हैं कितनी ज़्यादा हवा मिलती है और आपके हेटर्स का सपोर्ट भी। अरे लेकिन बेवकूफ़ लोग हैं क्या, पर्सनल लाइफ की वजह से मेरी मूवी को क्यों बॉयकॉट कर रहे हैं और उसे लेकर इतना कुछ बोलना, अक्षत थोड़े गुस्से में बोला और गुस्से के साथ साथ मन ही मन वो इस सिचुएशन से निपटने के बारे में कुछ सल्यूशन भी सोच रहा है। और तभी उसने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला, वो किसी का नंबर डायल करके उसे कॉल करने ही वाला है कि तभी उसका मोबाइल फ़ोन रिंग हुआ। मोबाइल फ़ोन रिंग होते ही स्क्रीन पर नाम लिखा हुआ देखकर उसने नज़र उठाकर अजय की तरफ देखा, तो अजय ने इशारे से पूछा कि किसका कॉल है, तो आदित्य ने उसको जवाब देते हुए कहा, रागिनी का, पता नहीं अब क्या बाकी रह गया इस लड़की का, इतना सब कुछ करके भी इसे चैन सुकून नहीं मिला। इतना बोलते हुए अक्षत ने रिसीव करके मोबाइल फोन अपने कान से लगा लिया, लेकिन दूसरी तरफ से उसे बहुत ही अजीब तरह की चीखने चिल्लाने और कुछ गिरकर टूटने जैसी अजीब सी आवाज आई। और फिर अक्षत ने पूछा, रागिनी हेलो, कहाँ पर हो और तुम मुझे इस तरह से फोन पर कनेक्ट क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हें मना किया था ना किसी भी तरह का कॉन्टैक्ट? अक्षत अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही रागिनी की एकदम मरी हुई सी आवाज आई, बट अक्षत प्लीज हेल्प मी, हेल्प मी, वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। क्रमशः